نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يؤمنون بالغيب، یہ ہماری سیریز ہے بلیف ان انسین ورلڈ، اور اس میں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان. آج کا لیکچر جس کا نام کیا ہے فرشتوں کے اہل ایمان سے تعلقات کی نوعیت، یہ اسی سیریز کا حصہ ہے. آج ہم بات کریں گے کہ فرشتے جو ایک بالکل معصوم سی نورانی مخلوق ہے، جن کے پاس گناہ نہیں، جن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اور دعاؤں کے قبولیت کے رستے کی رکاوٹ ہو، وہ ایمان والوں کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جس کو آپ اور میں صرف فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز فرشتوں کا ایمان والوں سے تعلق، کہ وہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، لو کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کو کھول لیجئے تو فرشتے اہل ایمان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کو پسند بھی کرتے ہیں. اب یہ اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی تو اس کی کوئی دلیل ہوگی؟ بالکل ہے. اور میرا خیال ہے جی وہ حدیث ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے، اسپیشلی جو ذرا سا کسی کلاس میں آتے جاتے اور بڑی محبت سے ہمارے اساتذہ کرام یہ حدیث سنایا کرتے تھے. ابو ہریرہ کی روایت ہے، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل. سوچیے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اپنا نام لکھیے، آپ کیوں دبے ہوئے رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ہر وقت گناہ گار کہتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ لکھیے اپنا نام. یہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے. کیا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کہیے عمل کی بات، میں نے اپنا نام ان لوگوں میں لکھوانا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. دیکھیے، بندہ اللہ سے محبت کرے یہ بھی بڑی بات ہے، اور ایمان والوں کی تو یہ علامت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں، لیکن اللہ سے کوئی محبت کیوں نہ کرے؟ اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ جو ذرا سا بھی اس کو جان لے گا اس سے محبت کرے گا. لیکن وہ ذات جس کے 200 سے زائد نام ہیں، اس کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، خوبیاں، اس کے نام، وہ کسی بندے سے محبت کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے. صرف سمجھانے کی خاطر کہوں گی، امام کعبہ، سب ان سے محبت کریں گے، ان کی آواز، ان کی بات، ان کی نیکی، لیکن امام کعبہ کسی سے محبت کریں، یہ بڑی بات ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کرنا. کہا کریں گے میری بات ہو رہی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ نادا جبریل، وہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے جبرائیل کو. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل، یعنی ان اللہ یحب فلانا فاحببہ. اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آپ بھی کیجیے. اللہ جبرائیل کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس بندے سے محبت کیجیے. فوراً فیحبہ جبریل، تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، وہی لفظ جو اللہ نے خود کہے، وہی لفظ جبرائیل کہہ رہے ہیں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، فَأَحِبُّوهُ، تم بھی اس سے محبت کرو. پیچھے کیا جملہ تھا؟ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ تم محبت کرو، واحد تھا. اب جبرائیل سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب بھی اس سے محبت کریں، تو کیا ہوا؟ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اس کو مقبول بنا دیا جاتا ہے. یہ تو ایک میں نے اپنے انداز سے ترجمہ دیا نا، اور یہ روایت کس کی ہے؟ بخاری کی روایت ہے، 3209 نمبر کی، اور صحیح مسلم میں بھی 2637. اب آپ ایک گو میں اس کا ترجمہ سنیں، تصور کی نگاہ سے خود کو لیں کہ اللہ میں ہوں تو نہیں ایسی، آپ بنا دیں. کبھی بھی اپنے گول چھوٹے نہ رکھیں، بڑے گول. اپنے بچوں کو بڑی بڑی دعائیں دیا کریں. جیسے ایک بچہ تو जब भी मैं मिलूँ ना तो मैं उस बच्चे का नाम लेकर उसको कहती हूँ जो भी उसका नाम है, बेटा अल्लाह ताला आपको काबा का इमाम बनाए। तो एक दिन उसकी अम्मी मुझे कहने लगी, मुझे कहता है मामा ये जो उस्ताजा दुआ देती हैं ये को भला मुझे लगनी है। सोची उस बच्चे की सोच। मैंने कहा उसको ये कहना कि ये दुआ मेरी ना भी लगी ना तो अल्लाह आपको अपने मुल्क अपनी गली किसी मस्जिद का इमाम बना देगा, और कुछ भी नहीं है तो आपको मस्जिद का 5 वक्त नमाजी तो बना देगा ना। तो हमेशा अपने बच्चों को और स्पेशली टीनेजर ग्रोइंग बच्चे बेटियां के बेटे हमेशा उनका मोरल बुलंद करें। ये कहते हैं कि बजाय पढ़ते नहीं हो, नहीं आप पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ी ना, नहीं आपने बेटा नमाज पढ़ ली होगी। तो ये जो नेगेटिव पेरेंटिंग है ना ये फिर बच्चों के दिल से हमारी बातें निकाल देता है। एक माँ कहने लगी मेरा बच्चा कहता है मामा सबसे बड़ा गुनाह क्या है। अब जरा सुनिए मैं आपको पेरेंटिंग की बातें इसलिए बता रही हूँ कि आफ्टर ऑल हम हैं माएँ या बीवी हैं, बाकी काम तो जो होते जाएंगे वो होते ही जाएंगे, लेकिन हमने अखीर अपनी घरदारी में रहना है। तो कहने लगी कि मेरे बेटे ने पूछा मामा सबसे बड़ा गुनाह क्या है। अब पता नहीं माँ भी किस ज्यादा उसे सही नहीं बताया, मैं होती तो कहती शिर्क। तो उसने कहा कि किसी का दिल तोड़ना। तो बच्चे का जुमला सुनिए कि मामा फिर ये जो आप सारा दिन हमारा दिल तोड़ती रहती है। अब बच्चे का तो दिल टूटेगा ना जब आप उसको नेट से रोकेंगे, नेटफ्लिक्स से रोकेंगे, उसके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, उसका वाईफाई कोड बदल देंगे, उसको हॉटस्पॉट नहीं देंगे, ऐसा ना कीजिए। लेकिन करे ये आपके शहजादे और शहजादी हैं, जितनी आप अपने बच्चों से दिल में मोहब्बत रखती हैं ना इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नहीं रखती, कम अज कम उसका कोई 50% तो इजहार कर दिया करें। हमारा हाल ये है कि लाड की बात भी मोहब्बत की बात भी तंज में ही करनी है। आज ख्याल आ गया माँ का तुम्हें, आज तो बहुत ही कर रहे हो, कोई काम होगा मुझसे है ना, करते हैं कि नहीं। लेकिन याद रखिए घर का गवाह जो होता है ना चाहे शोहर हो चाहे बच्चे हो या मुलाजिम हो उसकी गवाही सबसे ऊंची होगी। तो अब मेरी सारी बात जहन में रखकर सुनिए, आप इस हदीस के अंदर अपना नाम सेट कीजिए, अपने हस्बैंड करीब का भी कर ही लें, आपकी सास का बेटा ही आखिर क्या हुआ अगर आपको ज़रा देर से मिला है। अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत और केयर है उतनी सास के बच्चे से भी कीजिए और बच्चों को भी लीजिए। अपने सारे प्यारों को जहन में रखकर दुआ करती हूँ, मैं भी अपने लिए करती हूँ कि अल्लाह तो इस हदीस के मुताबिक मुझे बना दे। ये मेरी बातें हो रही हूँ, मेरे शौहर की, मेरे भाई बहनों की, उनके बच्चों की, माँ बाप की, अल्लाह तो प्यारों को ऐसा जोड़ दे। और ना अपने बच्चों को दुआएं दिया करें अपलिफ्टिंग ऐसे किया करें उनको कि उनका खुद ब खुद नेक बनने को दिल करे, नेकी करने को दिल करे। क्या कहा, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल को आवाज़ देकर कहते हैं ए जिब्राइल बेशक अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है तुम भी उससे मोहब्बत करो, चुनाचे जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। इससे पता चलता है कि फरिश्ते अल्लाह का हुक्म फौरन मानते हैं। भैया फलूना मा योमरून, ये बात हमने इस सीरीज में कई दफ़ा की है। फरिश्ते डिली डली नहीं करते, लेथार्जिक नहीं है, सुस्त नहीं है, इफ्स एंड बट्स नहीं सोचते, अच्छा अल्लाह की बात मानी फ़ायदा होगा कि नुकसान, अच्छा फ़ौरन क्यों मानूँ, फ़र्ज है कि सुन्नत है कि नफिल, ये भी सारी खूबियाँ हम इंसानों को ही हासिल है। अल्लाह जैसी हस्ती की बात को सुनकर अपने दिल दिमाग के कटहरे में खड़ा करके देखते हैं, अच्छा फायदा हुआ तो मान लेंगे नहीं तो नहीं। फरिश्ते ऐसा नहीं करते, इधर अल्लाह ने कहा उधर वो मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील आसमान वालों को आवाज़ देते हैं कि अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं बस तुम भी उससे मोहब्बत करो, चुनाचे आसमान के फरिश्ते भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर वह ज़मीन में भी इसे मकबूल बना दिया जाता है। यहाँ तो हदीस इतनी है ना, और भी दो तीन हवाले हैं। आसमान के फरिश्ते फिर जमीन के इंसानों के दिलों में इल्का करते हैं तुम भी उससे मोहब्बत करो, उससे करो, उससे करो, और आखिर वो दुनिया में मकबूल हो जाता है, फेमस हो जाता है, शोहरत हो जाती है। आप दुनिया में कितने लोगों को जानते हैं ऐसे, कोई रिश्ता नहीं है आपका उनसे, कोई मुलाकात भी नहीं, लेकिन आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत है। ये अल्लाह डालता है, याद रखिए सच्चे मोमिन होने की एक नकद निशानी अल्लाह उसके लिए दिलों में मोहब्बत डाल देता है। ये तो आज हम मुसलमानों ने न जाने किस किस्म का दीन पढ़ लिया है जी, मौलवी साहब उनका डंडा और फलाम बात जी, हिफ्स तो हवा डंडे के बगैर होता ही नहीं। सख्ती करो। ये जब हमारी आवाजों में दुरुस्तगी आ जाती है ना, टॉन्टिंग स्टाइल, तंजिया, आप दीनदार नहीं है, आप नमाजी हो सकते हैं, आप रोजे रख सकते हैं, आप तहज्जुद गुजार हो सकते हैं, आप नेक नहीं है। नेक वो बंदा होता है जिसके दिल में नरमी हो, अपने कुछ ना होने का एहसास और दूसरों के सब कुछ होने का एहसास, फिर आपको सब अच्छे लगते हैं। अभी रास्ते में बात हो रही थी, आप दूसरों की गलतियों को कैसे ओवरलुक करती हैं, मुझे पूछा इन्होंने। मैंने कहा मुझे अपनी याद रहती है, हम सब बशर हैं, मुझे तो अपने साथ रहने वालों में कभी कोई गलती दिखी नहीं, कोई खामी दिखी नहीं। अल्लाह ने भी हमें कमियों और खामियों के साथ कबूल किया हुआ, बराबर में क्या। तो कभी लोगों की नजरों में आप गए हैं, इस गलत फहमी में ना रहिएगा। चार लोग हमें जानने लग जाएं, चार लोग हमारे सब प्यार का इजहार करें, हम तो आसमान पे चढ़ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम कोई अर्श के किंगरे हो गए और किसी को अप्रोचेबल ही नहीं, बात नहीं करनी, नंबर नहीं देना, किसी से सलाम दुआ नहीं करनी, ये तकबर होता है। दीनदार पता कौन होता है? जिसके साथ बैठकर आपको वो अपने जैसा लगे। हम दीनदार वो समझते हैं जो जरा मखारिज सही, अस्सलाम वालेकुम, हम आर्टिफिशियल दीन रखते हैं। देखिए एक रंग है जो मुंह पे लगाते हैं आप, वो थोड़े से देर के बाद देखिएगा कितनी लाइनें बनेंगी चेहरे पे, मोटी बेस्ट लगा दे। और एक सेहत होती है जो अंदर से दिखती है, हेल्दी होता है वो। नेचुरल चीज हमेशा देर पा होती है। तो वो दीन जो आपको ऊपर लबादा पहनना पड़े, उसका ऊपर एक मास्क पहनना पड़े ना, कॉस्ट्यूम, वो दीन नहीं होता। लोग आपको देखते, हटो बचो, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गई। मुझे सबसे ज्यादा घबराहट इससे होती है। मैं बाहर से आने तक सबको कह रही थी, मेरे आने पे ना कोई खड़ा हो ना बात करे, ये फूल वूल भी अल्लाह आपको मुबारक करे, बात आप प्यार से करते हैं, मुझे अफसोस ही होता है। सिर्फ कहने का मतलब अल्लाह ने हमारे ऐप छुपाए हुए हैं, अल्लाह खुद दिलों में प्यार डालता है। तो अपने आप से आज पूछिएगा, अकेले में पूछिए, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, अपने घर वालों से पूछिए, शौहर से पूछिए, आप मेरे बारे में अपने दिल में क्या महसूस करते हैं। अगर आपको मेरे बारे में आप जितना पता चल गया है, अब तो छुपा ही कुछ नहीं ना, 10 साल के बाद तो बंदा पूरा ही आउट हो जाता है, 20 साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाता है। पूछिए अपने मियाँ से आप, जबकि मैं आपके ऊपर पूरी खुल गई हूँ, क्या स्टिल अगर आपको मौका मिले तो मुझसे शादी करते? क्या मुझसे शादी करके खुश हैं? किसकी जरूरत है ये आज पूछने की? सवाल पूछेंगे, जवाब क्या आएगा? किस किस को कॉन्फिडेंस है कि वो कहेंगे हाँ बेगम आप जैसी तो कोई है ही नहीं। वो एक हमारी साथी है ना, तो वो उसका मियाँ है, वो कहती है, मेरा मियाँ कहता है तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी अच्छी हो, मेरा दिल करता है तुम जैसी दो होती। तो कॉन्फिडेंस है। अपने रिश्तों में हमेशा एतमाद रखिए। मैं झोल क्यों रखूँ? जैसे मैं अल्लाह के लिए मुखलिस हूँ ना, खालिस हूँ, मैं अपने शौहर के लिए भी खालिस हूँ। बच्चों के लिए तो हम होते ही हैं, कुछ ज़्यादा ही खालिस हो जाते हैं, उनको चुभते हैं हम। लेकिन पहली चीज़ जो इस बात से पता चली, मोहब्बत, मोहब्बत फातह आलम, जुबान शीरी मुल्क गिरी। चलिए अब आपको आज एक कोड वर्ड मिल गया, लव कोड। अपने बारे में लोगों से राय लेते रहा करें। एक होता है लोग आपसे दब जाते हैं, डर जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पीछे बातें करते हैं, मुंह पे जी 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 करते हैं, नहीं, दिल में मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं, हम में से हर एक को ये लगता था कि अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत है। मुझे लगता है मेरे साथ, आपको लगता है आपके साथ, आपको लगता है आपके साथ। तो ये मोहब्बत बांटिए। आगे चलते हैं, सेकंड थिंग, अहले ईमान के लिए बख्शिश और रहमत और जन्नत की दुआएं मांगते हैं फरिश्ते। और क्या चाहिए? फरिश्तों की ये दुआएं जो अहले ईमान के लिए बख्शिश, रहमत, जहन्नुम से आज़ादी और जन्नत में दाखिले की हैं। कुरान पाक में सूरत अल अहज़ाब की आयत 43 लीजिए, चंद आयतें आपको देती हूँ। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। वही अल्लाह है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है और इसके फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाए। और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। ये जो आप कुरान के नूर की तरफ आए हैं ना, कोई पता नहीं किसी फरिश्ते की दुआ से आप आए। हम अंधेरों में थे, जहालत के अंधेरे थे, नफ्स परस्ती के अंधेरे थे, शॉपिंग के अंधेरे थे, फिल्मों के, ड्रामों के, गानों के अंधेरे थे ना, कुरान ने आपको उसकी तरफ खींच दिया। और अगर इस जगह जहां आप बैठे हैं, ये तो मैं कुरान की आयतें दे रही हूँ ना आपको, मैंने सिर्फ चंद आयतें जमा की होती हैं और उसके हल्की सी वजाहत होती है, एक मौजू की आयतें और हदीसें लेके आ जाती हूँ, बस ये मेरा दर्स होता है। आपके हाथ में कुरान हो, सूरह फातिहा से नास, इसी छत के नीचे बैठ के पढ़ ले या कोई और छत हो, फिर आपको मेरी ये बात याद आएगी कि लाइफ चेंजिंग क्या होता है, अप्स एंड डाउन क्या होता है, जिंदगी बदल गई ये जुमला फिर क्या होता है। तो फरिश्ते इंसानों के लिए दुआएं करते हैं। दूसरी आयत लीजिए, सूरत शूरा आयत नंबर 5। तकादुस समावात यतफत्तर न मिन फौकिहिन फौकिहिन नवल मलाइका तो युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरून लिमन फिल अर्दी अला इन्नल्लाहा हुवल गफूरुर रहीम। करीब है वो दिन जब आसमान अपने ऊपर से फट पड़ेंगे और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान करते हैं, और जमीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह ताला ही मुआफ़ फरमाने वाले और रहमत करने वाले। यकीन करिए इनमें से हर आयत अपनी जगह एक दर्स है। सिर्फ इन आयतों की तफसीर सुन लीजिए, आप आंसुओं से रोएंगे। आप आज इस दुनिया में कौन किसी के लिए दुआ करता है, आज कौन किसी के लिए वक्त रखता है? फरिश्ते आपके गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते, आपकी रब की पाकियां बयान करते हैं। आज सुबह बच्चियों के साथ एक सेशन था एक स्कूल में, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई बच्चियों के सवाल से कि कैसे पता चले कि हमारी तौबा कबूल हो गई है, कैसे पता चले कि हमारे गुनाह माफ हो गए हैं। मैंने कहा अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। एक दर्स सिर्फ 38 मिनट का मैंने दर्स दिया, और उसके बाद फिर उनकी खुशी से जितनी देर भी सवाल जवाब थे या जो डिस्कशन हुआ ना, तकरीबन 50-60 मिनट का टोटल सेशन था, और बच्चियों के अंदर एक हलचल मच गई है ये मैं कह सकती हूँ। मुझे चेहरों से पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान का पढ़ना और ना पढ़ना बराबर नहीं है। अपनी नस्लों को कुरान से जोड़िए। कैसे? खुद कुरान से जुड़े। आप कहते पढ़ते तो हैं, कोर्स तो कर रहे हैं, वो तो करें, लेकिन अपने दिल दिमाग पे उतारें, आपका ये वजूद चलता फिरता कुरान बन जाए। चलिए तीसरी आयत भी ले लेते हैं, सूरत मोमिन आयत 7 से 9। अल्लज़ीन यहमिलून अलर्श व मन हौलहू युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही। जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द हैं, सब अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं। व यस्तग़फिरून लिल्लज़ीन आमनू, और ईमानदारों के लिए बख्शिश मांगते हैं। अब हाईलाइट करना चाहे तो कर ले, फरिश्तों की दुआ क्या है, उसके लफ्ज़ क्या है, रब्बना वसिअ कुल्ल शयइन रहमा रहमतं व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम रब्बना वअदख़िलहुम। आप आमीन कह सकते हैं दिल में। वअदख़िलहुम जन्नाति अत्निल्लती वअतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़्वाजिहिम वज़ुर्रियातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम वक़िहिम अस्सय्यिआति वमन तक़िस्सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहिमतहु वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। एक एक दुआ को ज़रा गौर से सुनिए। जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द हैं, सब अपने रब की हम के साथ तस्बीह करते और इस पर ईमान रखते हैं, और ईमानदारों के लिए बख्शिश मांगते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज़ का अहाता कर रखा है, लिहाजा जिन्होंने तौबा की। आप तौबा करें, फरिश्तों की दुआएं लेंगे आप, और तेरी राह की तबाह की, सेकंड थिंग, अल्लाह के रास्ते पे चलते जाइए, फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी। इन्हें बख्श दे और जहन्नुम के अजाब से बचा ले। ए हमारे रब, तू इन्हें हमेश की वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया है, और इनके बाप दादों बीवियों और औलादों में से भी। ना सिर्फ ये कि आपको दुआएं मिल रही है, आपके माँ बाप बीवियों यानी शोहरों और औलादों को भी, इन सब को जन्नत में ले जा। आमीन तो कहिए। जो नेक अमल है यकीनन तो गालिब और बाहिकमत है, और इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक तो यह है कि इस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया, इस पर तूने रहमत कर दी, और यही बड़ी कामयाबी है। रशकार किन पे? ये कोई उलमा की बात नहीं हो रही, ये अम्बिया कराम की भी बात नहीं हो रही, रसूलों की भी नहीं हो रही, किसकी हो रही है? जो लोग तौबा करते। फ़ाग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू व तबो सबीलक। दो काम कर लें आप, पिछले गुनाहों से माफ़ी, तौबा, और अल्लाह के रास्ते को फॉलो करें। कल तक अमल नहीं था, अब अमल करें, बस ये आप कर लें। आपको दुआएं, आपके माँ बाप को दुआएं, आपकी औलादों को दुआएं और आपके शौहरों को दुआएं। और क्या चाहिए? उम्रे पे जो आते हैं ना, भूले बिसरे लोग भी मैसेज कर रहे होते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर हम रख भी लें, क्या गारंटी है किसी बंदे की दुआ की? अल्लाह ने क्या लाज रखनी है? मेरे आपके पास कोई श्योरिटी नहीं। मेरे अंदर कोई ऐसी खराबी हो सकती है जो दुआएं कबूल करने की रुकावट हो। मेरा रिस्क खराब हो सकता है, मेरे दिल में कीना, बोगस, हसद। जाहिर हम दीन के काम कर रहे होते हैं और दूसरे दीनदारों के लिए हमारे दिल में हसद होता है, रकाबत होती है। अब मेरी दुआएं कहाँ कबूल होनी है? लेकिन फिर भी हम लोगों के पीछे फिरते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, कोई नहीं कहने की जरूरत। दुआएं लीजिए, दुआओं के लिए कहते नहीं है कि दुआ कीजिए, ऐसे काम कीजिए कि खुद दुआएं लें। और मैं अक्सर लोगों के बारे में सोचती हूँ, करवटों में, रात के जागने में, दिन में, वो कैसे दुआएं लेते हैं जैसे सांस चलती है, उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि वो दिन रात इस मिशन के साथी हैं। ये काम ऐसे नहीं होते। डिसिप्लिन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आपको दीन का काम करने का मौका मिल जाए, फौरन उसको अडॉप्ट कर लीजिए। मैं अकेली सारा दिन इधर से उधर मारी मारी फिरती रहूँ ना, दर्स देने हैं मुझे, शौक है, आज इधर पढ़ाना है, आज उधर पढ़ाना, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मैं दूंगी। टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। और आपका ख्याल है मैं बोल रही हूँ तो मुझे अजर हो रहा है, तो ये सारा जिन्होंने किया उनका अजर किधर गया? ये बिजली जल रही है, इसका अजर किधर गया? जो ड्राइव करके गाड़ियां लेकर जान को रिस्क में डालकर लाए, उनका अजर किधर गया? जो अपने घर खोलते हैं, उनका अजर किधर गया? तो ये दिल से निकाल दीजिए कि दीनदार वो होता है जो माइक लगा के बैठ जाता है आपको पढ़ाने, टीचर वो नहीं होता। हर एक दीन का अनसारुल्ला बन के अपने आप को उस सिस्टम में खपा दे, ये है दीन का मिजाज। और यहाँ यही बात है कि अल्लाह तू इनको उन जन्नतों में दाखिल करना जिसका तूने उनसे वादा किया। अब सवाल ये है, फरिश्तों की दुआएं, एक जनरल बात की, अब मैं आपको इसकी एक सब कैटेगरी लिखाती हूँ। चलिए लिखिए, फरिश्तों की दुआएं पाने वाले चंद खुश नसीब। क्यों बताऊं? ताकि वो काम करने का शौक आए। दुआएं ऐसे थोड़ी मिलती हैं, तो कुरान और सुन्नत से पता चलता है। नंबर एक, खैर और भलाई का सबक देने वाले, इनको फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं। दलील है, वो उमामा बाहिली हैं रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन अल्लाह व मलाइकतहू वअहलु समावाति वल अर्दीना हत्ता नमलत फी जुहरीहा व हत्ता लहूती ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। यकीनन अल्लाह ताला के तमाम फरिश्ते और तमाम आसमानों और ज़मीन वाले, हत्ता के चींटी अपनी बिल में और मछली पानी में, इन लोगों के लिए रहमत की दुआ करते हैं जो लोगों को खैर की तालीम देते हैं, और खुद अल्लाह ताला भी इन पर अपनी रहमत निचावर करते हैं। ये तिर्मिजी की रिवायत है 2685, और मजमू ज़वायद में भी है 129 पेज पे। अब आप मुझे बताइए, क्या हम इस वक्त खैर की बातें करें? अल्हम्दुलिल्लाह, भलाई की बातें कर रहे हैं। तो यकीन कीजिए, इस वक्त मछलियाँ, चींटियाँ और फरिश्ते हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और क्या चाहिए? कभी जिंदगी में ऐसी आपकी दुआ कबूल होती है, यानी अभी दिल में बात होती है, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, आप कहते हैं मैंने तो भी मांगा भी नहीं। अल्लाह कहता है किसी चींटी ने मांग दिया होगा तेरे लिए, किसी मछली ने तेरी सिफारिश कर दी होगी। दूसरा, नमाज बाद जमात का इंतजार करने वाले। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ाइदा सल्ला लम तज़लिल मलाइकतु तुसल्ली अलैहि मा दामा फी मुसल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा अरहमहु। जब आदमी नमाज पढ़ लेता है तो फरिश्ते इसके लिए उस वक़्त तक दुआएं करते रहते हैं जब तक वो अपनी नमाज वाली जगह यानी मुसल्ले पर बैठा रहता है। फरिश्ते दुआ मांगते हुए कहते हैं, या अल्लाह इस पर रहमतें निचावर फरमा, या अल्लाह इस पर रहम फरमा। ये बुखारी की रिवायत है 647 और मुस्लिम की रिवायत 649 और 1506। रशकारा, आज तो मसरूफियत इतनी हो गई, वक्त पे कोई पहुंच जाए तो बड़ी बात है। वो लोग खुशबख्त है जिनका दिल मस्जिदों में लगता है। दुआ करें हमारे बच्चों के दिल मस्जिदों में लग जाए। 90% माशरे की बुराइयां खत्म हो जाती हैं जिन बच्चों का दिल लगे मस्जिद में। और मैं आप सब माओ को एक जिम्मेदारी दूंगी, अपने 10 साल से ऊपर के बेटों को मस्जिद से जोड़िए। शौहर नहीं जाते ना, आप जाइए छोड़ने। कुछ दिन के बाद बच्चे खुद ही कहेंगे कि बाबा वो नमाज पढ़े। खास तौर पे मगरिब, इशा और फजर, ये तीन नमाजें खुद भी जाइए। आपको एक के बदले में 27 या 25 मिल रहे हैं दिरहम, छोड़ेंगे? मैंने देखा सिस्टर्स खुद भी नहीं जमात से बढ़ती, दो लोग घर में पढ़े अलग अलग पढ़े, आपने कितना अपना नुकसान किया। तो बच्चों के दिल मस्जिदों से जोड़िए। चलिए तीसरा, नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठे रहने वाले। पहले कौन थे? नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं। अब तीसरा क्या है? नमाज पढ़ ली, लोग भाग रहे हैं और वो बैठे। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला यज़ालुल अब्दु फिस सलाती मा काना फी मुसल्लाहु यंतज़िरु सलाता व तकूलुल मलाइका। अब फरिश्तों की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू हत्ता यंसरिफु औ युहद्दिस। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, 649 और 1509। तर्जुमा क्या है? जब तक आदमी नमाज गाह यानी मुसल्ले या मस्जिद वगैरह में बैठा नमाज का इंतजार कर रहा होता है, तब तक वो नमाज पढ़ने वालों ही में शुमार होता है। और फरिश्ते इसके लिए इस तरह दुआएं करते हैं, या अल्लाह इसे बख्श दे, या अल्लाह इस पर रहम फरमा। फरिश्ते ये दुआएं उस वक़्त तक करते रहते हैं जब तक कि वो शख्स उठकर चला ना जाए या बेवुजू ना हो जाए। कितनी प्यारी दुआएं हैं जो आपको सिर्फ जायनमाज पे बैठने के लिए मिल रही, बैठ के अपना काम करते रहे। अब देखिए सर्दियां हैं ना, तो दिन छोटे हो रहे हैं, खास तौर पे मगरिब इशा बहुत कम वक्त है, बैठे रहिए, अपनी सारी कापियां किताबें जो है लेके बैठे, लेकिन कोई काम कर ले और वहीं बैठे रहे। नंबर चार, अगली सफों में नमाज पढ़ने वाले। और आप नोट करें, अभी तक सारी दुआएं पहली के सिवा सब नमाज से मुतल्लिक हैं। अगली सफ़ों में नमाज, हजरत बरा बिन आज़िब से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल अव्वल। अल्लाह ताला पहली सफ वालों पर रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अब यहाँ पहली सफ का तذکرہ है, तो फरिश्ते अगली सफ़ों वालों के लिए दुआएं करते हैं। ये पहली जो रिवायत है ये इब्ने माजा की है, अब्दुलरहमान बिन औफ से, 816, और दूसरी जो ये अबू दाऊद की है और निसाई में भी है, 618 और 781। अब सवाल क्या है? पहली सफ में कौन होगा? जो नमाज से पहले तैयार होगा। हमारे मर्द अल्लाह रहम करे जुम्मे की आखिरी रकत में पहुंचते हैं, अल्लाह ताला हमें आफियत दे। चलिए पांचवी किस्म के लोग, सफ के दाईं तरफ नमाज पढ़ने वाले। हज़रत आयशा से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मयामिनिस सफूफ। जो सफ़ों के दाईं जानिब नमाज पढ़ते हैं, फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला इन पर रहमत निछावर करते हैं। ये अबू दाऊद की रिवायत है, 276। राइट साइड पे आपको भी जब मौका मिले ना, तो राइट साइड पे खड़े हो, इसका अजर ज्यादा है। नंबर सिक्स, सफ़ों में मिलकर खड़े होने वाले। हज़रत आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अललज़ीना यसिलूना सफ। जो लोग सफ़े मिलाते हैं और खाली जगह पुर करते हैं, अल्लाह ताला इन पर रहमत फरमाते हैं और इनके दर्जे बुलंद करते हैं और अल्लाह के फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ मांगते हैं। रशकारा पूरे कल्चर है। ये इब्ने माजा की रिवायत है, 995, फिर इब्ने माजा 814। तो क्या पता चला कि दाईं तरफ नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होना, इससे फरिश्तों की दुआएं मिलती है। वमन सद्द फरजतुन रफाहुल्लाहु बिहा दरजा। नंबर सेवन कैटेगरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वालों के लिए। हजरत आमिर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्ली अलैहा इल्ला सल्लत अलैहिल मलाइका मा सल्लला फलयकुल अब्दु मिन जालिका औ लियक्सुर। जो कोई मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता है, इसके लिए फरिश्ते इस वक्त तक रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो मुझ पर दुरूद भेजता रहता है, लिहाजा कोई शख्स मुझ पर थोड़ा दुरूद भेजे या ज्यादा, यदि अब उसकी अपनी मर्जी है, ज्यादा भेजेगा तो ज्यादा दुआएं लेगा, कम पड़े देगा तो कम लेगा। और ये जो रिवायत है ये इब्ने माजा ही की रिवायत है, 908, अहमद में है 445 और जामे सगीर में 174। क्या पता चला के नेकी फरिश्तों की दुआएं दिलाने का जरिया बनती है। एट्थ कैटेगरी, ये बहुत आसान है आपके लिए, रोज़ा रखने वाले। عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو لوگ روزہ رکھتے ہوئے سحری کھاتے ہیں ان پر اللہ تعالی رحمت فرماتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو سحری کھانے کی بات ہے، کھا لے روز، بعد میں توڑ دیں، دعائیں بھی مل گئی. تو بات لوگ سحری نہیں کھاتے، نہیں رات لیٹ تک کھاتے رہے. سحری میں صرف اس نیت سے کھائیے کہ فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، اور یہ بھی ابن ماجہ ہی کی روایت ہے. چلیے آگے دیکھیے، نمبر 9، مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے. جو مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص شام کے وقت کسی شخص کی عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص صبح کے وقت کسی کی عیادت کے لیے جائے، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش مانگتے رہتے ہیں. آسان ہے؟ چلیے سوچئے، ڈھونڈیے گھروں میں، شہر میں کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جائیے، اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکتے. اب آپ دیکھیے، یہ 9 قسم کے لوگوں میں میں کہاں آتی ہوں؟ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں فرشتوں کی دو میں ہوں؟ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب اللہ کے رستوں میں نکلتے ہیں نا، ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں. پتہ نہیں کیسے یہ کام ہمارے ہونے لگے، پتہ نہیں میرے تو سارے کام اچھے ہو رہے ہیں. دعائیں ملتی ہیں، لوگوں کی بھی ملتی ہیں. آپ حرم میں بیٹھے لوگ آپ کو میسج بھیج رہے ہیں، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا، وہ دعائیں کرتا ہے. تو دعائیں دیجئے، دعائیں لیجئے، اور انفع الناس بنیے، لوگوں کو نفع دینے والا بنیے. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد دل کیا کر رہا ہے؟ کوئی عمل کی حرکت آ رہی ہے نا دل میں؟ اور انشاءاللہ جب یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہم سنتے رہیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. تو ہم نے فرشتوں کے کتنے معاملے پڑھے ابھی تک، ذرا دہرائیں گے؟ مجھے تو بھول گیا. فرشتے محبت کرتے ہیں ایمان والوں سے، دوسرا دعائیں دیتے ہیں. اگلا عمل لیجئے، فرشتے اہل ایمان کی رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں ان کو. حضرت حسان بن ثابت ایک بہت معروف شاعر بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا کرتے تھے. ان سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان سے کہا، یا حسان عجب الرسول اللہ اللہم ایدہ بروح القدس. اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کا جواب دو. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے، باتیں بناتے تھے، تو اب حضرت حسان کو کہتے کہ آپ ان کو جواب دیجئے. پھر رسول اللہ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، یا اللہ حسان کی روح القدس یعنی جبریل امین کے ساتھ مدد فرما. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسان سے جنگ قریظہ کے موقع پہ یہ کہا، اہجہم او حاجہم و جبریل معک، ان مشرکوں کی حجب کرو اور جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فرشتہ انسان کے دل میں خیر بھلائی اور حق کی تصدیق پیدا کرتا ہے، جبکہ شیطان جو ہے وہ اس سے الٹ کرتے ہیں. تو یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، 4123. تو کیا پتہ چلا کہ فرشتے انسانوں کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے، اللہ سے کہیے اللہ فرشتے مقرر کر دے جو ہمارے بچوں کو ہدایت کے رستے سے بھٹکنے سے بچا لے، اور اللہ کا دیر ہے. پھر نیکسٹ 4th پوائنٹ، فرشتوں کا تعلق ایمان والوں سے. فرشتے اہل ایمان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، خود بھی دعائیں کرتے ہیں، اور جب آپ خود دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، دعوت المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، جبکہ اس دعا کرنے والے کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. اور جب یہ شخص اپنے بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آمین اور تجھے بھی یہی ملے. یہ مسلم کی روایت ہے 2733، اور ابن ماجہ 2340. فائدہ کس کا زیادہ ہوا، جس کے لیے آپ نے دعا کی، یا آپ کا فائدہ جس کے لیے فرشتے نے دعا کی؟ ہمارا فائدہ ہوا، بالکل صحیح ہے. ایک اور روایت ہے ام سلمہ سے، رسول اللہ نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فان اللہ الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. ये मुस्लिम की रिवायत है 920। अपने लिए हमेशा अच्छी दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम दुआ करते हो इस पर फरिश्ता आमीन कहता है। तो कभी बुरे कलिमात ना निकाले, मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। चलिए सबसे पहले मोहब्बत करते हैं, नंबर दो दुआएं मांगते हैं जिसमें जन्नत की, जहन्नम से बचने की और बाकी चीज़ें, नंबर तीन रहनुमाई करते हैं, और नंबर चार दुआओं पे आमीन करते हैं। पांचवा ताल्लुक क्या है कि नमाज जुमा में शिरकत करने वालों के नाम एंटर करते हैं, साइन इन साइन आउट। हदीस में आता है कि जुमे के दिन और जुमे के खुतबे में शिरकत करने वालों के नाम फरिश्ते अपने रजिस्टरों में लिखते हैं। रिवायत है अबू हुरैरा से, इदा कान यौमुल जुमाती वकफतिल मलाइकातु अला बाबिल मस्जिद, जब जुमे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, और जो लोग जुमे के लिए मस्जिद में आते हैं तो इनके नाम बिल तरतीब अपने रजिस्ट्रों में लिखते हैं। कैसे? यक्तुबूनल अव्वला फल अव्वला व मसलुल मुहज्जिर कमसलिल्लज़ी यहदी बदनतन सुम्मा कल्लज़ी यहदी बकरतन सुम्मा कब्शन सुम्मा दजाजतन सुम्मा बीदतन फ़ैज़ा खरजल इमामू तबऊ सुखुफ़हुम व यस्तमेउन ज़िक्र। जो अव्वल घड़ी में आता है उसके लिए इतना सवाब है जितना एक ऊँट ज़बह करने का, और इसके बाद वाली घड़ी में आने वाले के लिए गाय का सवाब है, इसके बाद वाले के लिए एक बकरे यानी दुम्बे का, और इसके बाद आने वाले के लिए एक मुर्गी का, इसके बाद आने वाले के लिए एक अंडे का। और जब इमाम आ जाता है तो वो फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करके वाज यानी खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं। ये बुखारी की रिवायत है 929 और मुस्लिम में है 850। अब मुझे बताइए हमारे घरों के मर्द अमूमन कब जाते हैं, जब वो हाजिरी लगनी बंद हो गई, जुम्मे का खुतबा शुरू हो जाए, तो आम जोहर का नमाज होता है, जुम्मे का नहीं होता। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।